तीन, ग्यारह, दस, पचहत्तर की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कुछ एक ग्रुप से मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किए और फिर उन्होंने जो उत्तर दिए उनका सार यहां लिखा है। प्रश्न, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? उत्तर, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजय ही होंगे। प्रश्न, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? उत्तर, जो यहाँ सदा विजय रहते हैं वही विजय माला में आएंगे, इसलिए विजयंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजयी हैं, वे 16,000 की माला में आएंगे। प्रश्न, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? उत्तर, हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी है। जो बात अनेक बार की जाती है तो वह स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वह कर लेते हैं तो कह देते हैं कि यह तो मेरा संस्कार बन गया है, तो यहाँ भी अनेक बार के विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। प्रश्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर हो जाता है, अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। दूसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना, जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही न हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? तो ऐसा याद स्वरूप बनना है तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। तीसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न, दिल्ली यमुना के किनारे पर है, यमुना किनारे का गायन क्यों? उत्तर, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना, किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए हो कि अब भी उसके प्यारे हो? प्रश्न। दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? उत्तर। आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार है, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो, अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। हड्डियां व राख बांधकर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। कुछ एक मुख्य बहनों से संबोधन। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो? जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती है, उन्होंने मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों का बैलेंस होगा, तभी निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहां नम्रता के बजाय महानता ज्यादा है या महानता की बजाय नम्रता ज्यादा है, तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। टीचर्स वह होती है जो सदा अपने को बाप समान, वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती है। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। टीचर्स को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए सदा रूहानी नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ जब बेहद का नशा होगा, तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगे। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा सफलता मूर्त की निशानी? टीचर को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा के सिवाय और कोई बात उसकी स्मृति में न हो। ऐसी स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेगी, कमजोर नहीं रहेगी। ऐसी टीचर हो? ऐसा समर्थ अपने को समझती हो? समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है, ऐसी ही हो ना? टीचर को कमजोरी के बोल बोलना भी शोभता नहीं। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं होना? क्या संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं होना? टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट को खत्म करने वाली होती है, फिर तो अपनी कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को चांस तो बहुत मिलते हैं, कंप्लेंट समाप्त हो गई, फिर तो कंप्लीट हो गए। बाकी और क्या चाहिए? अच्छा, मुरली का मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो सदा अलर्ट होते हैं, वे कभी माया से धोखा नहीं खाते। दूसरी पॉइंट है, व्यर्थ संकल्पों व समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी को पावर हाउस के कनेक्शन से पावरफुल बनाओ। तीसरी पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। चौथी पॉइंट है, आप अपने से रावणपन के संस्कारों का सदा के लिए संस्कार करो। संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार साथ न जाए। पांचवी पॉइंट है, सदा यही रूहानी नशा रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तेरा दस पचहत्तर की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले, अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? झूलने का मजा है, झूलाने वालों का तो पाठ ही और है। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं, साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है। लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहां भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पाठ में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी, और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहां सदा साथ रहने वाले वहां भी सदा साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। जो अभी बाप समान बनते हैं, उन्हों को वहां भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना यह भी विशेष पाठ है। बाल, युवा और वानप्रस्थ सब आत्माओं में साथ, इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि, मध्य और अंत तक साथ निभाने का है। मजा तो इसमें है ना, जो फर्स्ट में साथ रहते हैं वह फिर 84 जन्मों में ही भक्ति काल में अल्पकाल के राजे बनने में व कोई भी पाठ बजाने में भी कोई न कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे, चढ़ेंगे भी साथ पर गिरेंगे भी साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अच्छा, इस मुरली का सार है, पहली पॉइंट है, जो यहाँ संगम युग में बुद्धि योग से बाप के सदा साथ रहते हैं, वही सारे कल्प में जीवन के भिन्न भिन्न पाठ में भी साथ रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, जो अभी बाप समान बनते हैं, उनकी भविष्य में भी फर्स्ट आत्मा के समान ही नशा व खुशी कायम रहेगी। अच्छा,